पाकीज़ा गुफ्तगू बुलंद अक़वाल में क्या चीज़ें थीं, आठ चीज़ें इसमें देखेंगे और आप देखेंगे कि एक एक चीज़ नबी सल्लम के अंदर मौजूद थी अल्लाह के हुक्म से। पहली बात है कि आपके अंदर हिकमत और दानाई थी, बात करते थे इतनी हिकमत वाली कि कोई बहुत बड़े स्कूल और मदरसे का पढ़ा हुआ भी ना कर सके। तारीख गवाह है कि अल्लाह के नबी ना तो किसी मदरसे में गए, ना किसी के पास इल्म सीखने बैठे, ना कोई आपका उस्ताद था, लेकिन आपने इल्म और हिकमत के खजाने लुटाए। तीन दफा कुरान में आता है युअल्लिमुहुमुल किताबा युअल्लिमुहुमुल हिक्मा, हिकमत सिखाई, और इसके लिए तो आप अल्लाह के नबी की अहादीस देख लीजिए। दो दो लफ्जों की हदीस है लेकिन इतनी खूबसूरत है कि आप उस काम को करते थे तो आपकी गुफ्तगू जो थी वो पुर हिकमत थी। अच्छा, पुर हिकमत गुफ्तगू क्या होती है? जब जहां जितना बोलना है बस उतना बोलिए, उसके बाद ख़त्म। फिर उसके बाद आप देखिए कि दूसरी चीज़ जो किसी की गुफ्तगू में होती है वो क्या है, हाफ़ज़े का इतना अच्छा होना कि अपने पास से बोलना। मिसाल देती हूँ, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको क्या बात अच्छी लगेगी कि मैं आपसे बातें करूँ, और इसके बरक्स अगर मैं एक बुक पकड़ूँ और खोलूँ और मैं पढ़ूँ और आप देखिए मेरा स्टाइल ऐसे हो कि दुरूद शरीफ के मसनून अल्फाज ये हैं, नबी सल्लम से साबित शुदा दुरूद के अल्फाज दर्जा ज़ैल अहादीस में दिए गए हैं, फिर अरबी पढ़ने में गलतियां करूं, फिर उर्दू पढ़ने में करूं, क्या आपका दिल लगेगा? अल्लाह के नबी की गुफ्तगू दूबदू होती थी, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ज़ुबानी बातें करते थे, आपके हाफ़ज़े में चीज़ें होती थी, और जब आप बोलते थे ऐसे लगता था मोतियों की लड़ी आ गई है, और वाकई अल्लाह के नबी की बातें सुन के ऐसे लगता था लिखी हुई बातें पढ़ रहे हैं। साफ जहन, कुशादा सीना था, खुला दिल था, बात एक दफ़ा सुनते दिल में आ जाती और इसकी वजह से पैगाम को बड़े खूबसूरत तरीके से दिया। अच्छा, इसका भी एक राज है, सबके दिल चाहता है हम ऐसे बोले, बात ऐसी हो कि उसके अंदर एक रब्त हो, तो उसके लिए फालतू मालूमात से दिल को दिमाग को खाली करें। जिस तरह हमारे घरों में बहुत फालतू चीज़ें जमे और रंग बिरंगी चीज़ें जमे ना, इसी तरह हमारे जहन दिल दिमाग में सात किस्म की चीज़ें हैं, इसलिए हमारी गुफ्तगू बेरब्त है। और इसका बेस्ट तरीका, अपनी रिकॉर्डिंग सुने। मैं कहती हूँ जितना बंदा अपनी रिकॉर्डिंग सुन के सीखता है, मैं कई दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ कि पहला अपना लेक्चर मैंने खुद एडिट किया था आज से कई साल पहले, और यकीन करें कि एक घंटे का लेक्चर एडिटिंग के बाद कितना रह गया, 15 मिनट का, मैंने सारा काट दिया, इतना मुझे अपने ऊपर गुस्सा। एक बात मैंने कितनी दफ़ा की, और ये क्या है, वो रिकॉर्डर को पता लग जाता है, हमें नहीं पता चलता। और यकीन करें कि आप अपने लफ्ज़ तोड़ लें, जुमले गिन लें। अल्लाह के नबी की अगली चीज़ बोलने में क्या थी, बात करते तो ऐसे कि सुनने वाला लिख लेता, ना बहुत आहिस्ता ना गुनगुने और ना चीखते ना चिल्लाते, आपकी बात करने में उतार चढ़ाव था, कभी जज्बात की गर्मी थी, कभी दिल नरम कर देते थे, कभी मोटिवेशन दे देते थे, और कभी बहुत ही आउट ऑफ शेप हुए वालों को ज़रा सा दबा भी देते थे। यानी जिंदा लाइवली स्टाइल था, आप इस सारी बातों को लिख लीजिए कि लाइवली स्टाइल था आपके बातचीत करने का। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपके गुफ्तगू और आपके अखवाल की सूरत में हमें नज़र आती है वो क्या है, कि जो शरीयत आपको मिली पूरी के पूरी पूरी वजाहत के साथ लोगों के सामने पेश की, ना तो आपने कमी छोड़ी ना कुछ की। जैसे आप देखिए इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पहला सबक था ना, आपकी ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि आपका स्कूल में पहला दिन था, जो सुनकर आए लफ्ज़ ब लफ्ज़ आकर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुना दिया। आपने शरीयत की अदायगी में कमी पेशी नहीं की। किसी इंसान की गुफ्तगू की एक बहुत बड़ी खूबी है, और मैं अफसोस के साथ कहूँगी कि बहुत सारे लोगों में ये एक चीज़ कम है, किसी दूसरे की बात को मनोअन बताना। बात हम बता भी देना तो एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और कुछ नहीं तो ज़रा बॉडी एक फेस बना देते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ, और यकीन करें इसका बेस्ट तरीका यह कि डायरेक्ट बात करें। सेम मैसेज आप यहाँ से मेरा जाकर रिसेप्शन पे सिस्टर को दें जो भी वहाँ हैं इस वक्त, और अगर मैं खुद जाके कहूँ फ़र्क होगा, बी डायरेक्ट। अल्लाह के नबी ने क्या किया, आपके अंदर ये कमाल था कि जो बात आपने दूसरों को देनी थी जैसी थी वो मनोअन आपने उसको दे दी। जवामिल कलिम थे, फिर ये भी नोट करें, जवामिल कलिम कौन होता है बंदा, थोड़े लफ्जों में ज्यादा बोलना, कॉम्प्रीहेंसिव स्पीच थी। दो लफ्ज है तहादु तहाबु, क्या मतलब है, तोहफा दो मोहब्बत पैदा होगी, असलम तो असलम, इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे। दो दो लफ्ज़ों की हदीसें हैं, इस पे भी एक लेक्चर है पूरा जिसमें छोटे छोटे आपके जुमले सिर्फ छोटी छोटी हदीसों को पाइल अप किया गया, और वो छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाती हैं, आप और मैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तवील गुफ्तगू से परहेज करते थे, जुमले बहुत छोटे होते थे, मुख्तसर इबारतों के साथ लोगों को दीन की बात कहते जिससे लोगों के दिल पर ज़र पड़ती थी। यही वजह है कि आपने फिर अल्लाह का पैगाम खूबसूरत तरीके से रखा। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो आपके अख्वाल और आपकी पाकीज़ा गुफ्तगू का हिस्सा थी, वो क्या है कि कमज़ोरों और यतीमों से बात करते हुए आपका लहजा फ़र्क नहीं होता था बड़े लोगों से बात करते हुए। आप इसको इस तरह समझिए कि हमारे आपके बात करने में लोच कब आता है, जब कोई सामने बड़ा हो और ज़रा हमसे छोटा, हम कहते हैं छोड़ो, और कोई सुनाना चाहे बात, हम कोई सुनते हैं किसी की, तौबा तौबा, हम कहेंगे इनकी बात मैं सुनूं। अल्लाह के नबी का शेवा क्या था कि गरीब से गरीब, यतीम से यतीम, और बेचारा जिसको आप कह लीजिए कि किसी जगह उसकी इज्जत ना हो, कोई उसकी सुनवाई ना करे, अल्लाह के नबी सल्लम उसकी बात को उतनी ही अहमियत देते थे जितनी किसी बड़े बंदे की बात को अहमियत देते थे। और ये आपको मुझे अपने अंदर ढूंढनी है। कहावत भी बनी हुई है, तो गलत है, मुहावरा कह लें। क्या कहते हैं, बंदा देख के बात करते हैं, फलाएं जी वो बंदा देखता है तो बात करता है। नहीं, याद रखिए गुलाब सबके लिए गुलाब है। ये नहीं हो सकता कि आप गुलाब सूंघे तो खुशबू आए और दूसरा सूंघे तो उसमें से मिर्चों की स्मेल आए। तो अखलाक होता ही हुआ जो खुलुक है, जो पुराना हो गया, जिसके लिए सोचना ना पड़े। फिर आप देखिए कि इसके लिए आपने सहाबा को भी ट्रेन किया, आपस में बुगज ना रखो, हसद ना करो, ताल्लुक ना तोड़ो, आप लोगों के अंदर दूसरों की खूबियों को देखो, अच्छी चीज़ों पर नज़र रखो। महजब थे, तहजीब याफ्ता थे। फिर आप देखिए कि बुराई ना सुनते ना कहते। और हकीकत है कि कुन तुम खैर उम्मत नुखरिजत लिन नास का अमली नमूना थे आप, कि आपको अल्लाह ने वो सारी खूबियाँ दे दी कि जिसकी वजह से ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाना था, और आपने इतना नपातुल्ला टू दी पॉइंट पैगाम दिया कि जिसको नहीं मानना था ना, वो था जो मान सोच के आया था कि मैंने नहीं मानना। बात जब हम लोगों पर गिला करते हैं वो नहीं सुनते, लेकिन असल बात है कि गिला हम बोलने वालों पे भी आ सकता है कि शायद हमने उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा ही कोई कड़वी गोली उनको दे दी या मुश्किल दी। तो बहरहाल नबी सल्लम में ये खूबी थी। फिर पांचवी खूबी जो किसी की गुफ्तगू में और उसके अकवाल में होती है, जब सवाल पूछा जाए तो उसका सुलझा हुआ जवाब देना, वाज़े जवाब। किसी मौजू पर कोई अगर आपसे मुजादला करता, झगड़ा करता, तो आपकी दलील जाहिर और बाहिर होती, कोई आपको आजिज़ नहीं कर सकता था। और हम क्या कहते हैं, घर आके याद आया क्या कहना था। अक्सर लोगों की आदत होती है, झगड़ा है या बात का मौका है, उस वक्त कोई नहीं याद होता, फिर घर की गाड़ी में बैठती बातें याद आती, लब मैं ज़रा फ़ोन मिलाऊं, तो बड़े कहते हैं कि जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए वो अपने ऊपर मार लो। अल्लाह के नबी को बात वैसे उस वक्त सूझ जाती थी जब कहनी होती थी। फिर छठी खूबी क्या थी कि आपका लहजा बड़ा सरीख था। सरीख किसको कहते हैं, बात बना के नहीं करते थे। आज हमारा हाल है कि कहना पड़ता है सीधी बात करो, ये चाहिए जो ले लो। कुछ लोग यकीन करें अभी वो मिन कर रहे होते हैं ना, तो उनकी बात का समझ आ जाता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लगी लिपटी नहीं रखते थे, प्लेन सिंपल, इधर की उधर की नहीं। आप किसी ने आपको झूठा कहा, आप किसी ने आपको काहिन कहा, आपने कुछ भी उसका बुरा नहीं माना। और आप देखिए जो आपको नबूवत से पहले सादिक और अमीन का लकब मिला, तो वो इस वजह से था। ये सारा जो किरदार आपका पड़े, ये कोई नबूवत के बाद नहीं बना, ये भी नोट करें। अल्लाह कारे नबूवत उनसे लेता है जिनको पहले इन औसाफ का हामिल कर देता। और जुबानें गीबतें बोलती हों, कान गीबतें सुनते हों, और इधर उधर दुनियादारियां हों, और एकदम आप कुरान के हाफिज हो जाएं और आलिम हो जाएं और आप हिकमत के मोती दें, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होता, इसके लिए टाइम लगता। अल्लाह ने नबी सल्लम को पहले ऐसा बनाया, फिर अपना दीन दिया, फिर आपको वो पैगाम दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जिन्होंने मानना था मानना। इनकलाब जो आपने पैदा किया अल्लाह के हुक्म से, वो तो किसी को नहीं। इसीलिए आप देखिए कि अरबों में कोई ये नहीं कह सका आज तक कि ये शख्स झूठ बोलता है। फिर सातवीं खूबी जो किसी की गुफ्तगू के नाते से होती है, हमेशा ज़रूरत के मुताबिक बात करते थे। ख्वामख्वाह अपनी गुफ्तगू लंबी नहीं करते थे और ना नाकस बात करते थे, यानी लूज टॉक नहीं थी आपकी। ज़रूरी गुफ्तगू के अलावा आम हालात में खामोश रहते थे। इसीलिए तो सहाबा ने आपकी बातें याद कर ली और बाद में उनको किताबों में लिखा। यकीन करें, एक जुमला बोलने लगी हूँ तकलीफ के साथ, अगर अल्लाह के नबी को हमारी तरह बोलने की आदत होती तो आज हदीसों के अंबार होते, ज़खीरा इतना बड़ा होता, क्योंकि जो बोलते थे वो हदीस थी, जो करते थे वो हदीस थी, वो सुन्नत थी, जिस पे कुछ नहीं कहते थे कोई कारा वो तकरीर थी। ऐसे ही है ना, अल्लाह के नबी ने लोगों को इतना कहा ही नहीं। हम शादी हालों में बैठ के तबलीग कर रहे होते हैं, हम बस स्टैंड पे खड़े लोगों को मुसलमान बनाने की कोशिश में, यानी बेमौका बात नहीं करते थे, गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं करते थे। और आठवीं और आखिरी बात क्या है कि आप बहुत फसीह थे। फसाहत नाम भी बड़ा प्यारा है, फसीहा अगर किसी का हो, जामे मुख्तसर वाजे और तकल्लुफ और तसन्नों से पाक आपका कलाम था। बहुत जामे कलेमात बोलते थे, खुतबे आपके फसीह थे, नसीहत से भरे होते थे, वाज करते थे तो ऐसा करते थे कि दिलों पे आ जाए। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी को अगर अल्लाह ने इंसानों के पास भेजा तो उससे पहले उनको बात करनी सिखाई, गुफ्तगू का तरीका सिखाया, और लोग फिर पहचान गए। और जिन्होंने हदीस पढ़ी है वो इन सारी बातों की तस्दीक करेंगे। आप कुरान पढ़ें और उसके बाद हदीस पढ़ें और उसके बाद कोई सहाबा का अपना कॉल पढ़ें, जैसे जौहरी पहचान जाता है ना कि ये सच असली हीरा है कि ये नकली है, इस तरह आज इल्म वाले पहचानते हैं कि ये अंदाज़ नबी का नहीं हो सकता। रिसर्च करो, बाद में पता चला ना ना ये तो रावी का बयान था। इस बुनियाद पर आपको तो हदीसें शॉर्ट आउट हुई। तो बहरहाल आप देखिए कि इन 8 चीज़ों से मुझे आपको फिर क्या नुक्ता मिला अपने लिए, कि आपने मैंने अपनी गुफ्तगू को, अपने अंदर जो हम बातें करते हैं उसको चेक करना है।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد.